तुलसीदास विषय प्रकृति और स्वभाव पृष्ठ 8। हिंदी के राजाश्रित कवि प्रायः अपना और अपने आश्रयदाताओं का कुछ परिचय अपनी पुस्तकों में दे दिया करते थे, पर भक्त कवि इसकी आवश्यकता नहीं समझते थे। तुलसीदास ने भी अपना कुछ वृत्तांत कहीं नहीं लिखा। अपने जीवन वृत्त का जो किंचित आभास उन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका में दिया है, वह केवल अपनी दीनता दिखाने के लिए। किसी किसी ग्रंथ का समय भी उन्होंने लिख दिया है। उनके जीवन वृत्त के संबंध में लोगों की जिज्ञासा यों ही रह जाती है। दूसरे ग्रंथों कुछ किंवदंतियों से जो कुछ पता चलता है, उसी पर संतोष करना पड़ता है। उनके जीवन वित्त संबंधी दो ग्रंथ कहे जाते हैं। पहला बाबा बेनी माधव दास का गोसाई चरित, दूसरा रघुवीर दास जी का तुलसी चरित। पृष्ठ 9। पहला ग्रंथ अथवा उसका संक्षिप्त रूप नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित रामचरित मानस के एक संस्करण के साथ छप चुका है, पर उसमें लिखी अधिकतर बातें निश्चित ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध पड़ती हैं। दूसरा ग्रंथ कहीं पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है। हमारी समझ में ये दोनों पुस्तकें गोस्वामी जी के बहुत पीछे श्रुति परंपरा के आधार पर लिखी गई हैं। इनमें सत्य का कुछ अंश मात्र कल्पित बातों के बीच छिपा हुआ माना जा सकता है। अतः गोस्वामी जी की प्रकृति का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें उनके वचनों का ही सहारा लेना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। उनकी भक्ति के स्वरूप का थोड़ा आभास ऊपर दिया गया है। उससे स्पष्ट है कि वह भक्ति केवल व्यक्तिगत एकांत साधना के रूप में ही नहीं है, व्यवहारिक क्षेत्र के भीतर लोक मंगल की प्रेरणा करने वाली है। अतः उसमें ऐसे ही उपास्य की भावना हो सकती है जो व्यवहारिक दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन करता दिखाई पड़े, अर्थात जो उच्च और धर्ममय हो। इसी उच्च की ओर उठकर जब हृदय उमंग से भरता है, तब उसमें दिव्य कला का प्रकाश होता है। पद है उवरी परी कलहीन होई, ऊपर कला प्रधान, तुलसी देख कपाल गति, सावन घन पहचान। जब तक मोर की पूछ के पंख जमीन पर लुढ़कते रहते हैं, तब तक वे कलाहीन रहते हैं, पर जब लोक रक्षक और लोक रंजक मेघ को देख मयूर उमंग से भर जाता है और पंख ऊपर उठ जाते हैं, तब वे कलापूर्ण होकर डगमगा उठते हैं। जिस उपासना में उपास्य का स्वरूप मेघ के आदर्श तक पहुँचा हुआ न होगा, उसके प्रति तुलसी की सहानुभूति न होगी। इस प्रकार उनकी उपासना संबंधी उदारता की एक हद हो जाती है। भूत प्रेत पूजने वालों के प्रति उनका यह उदार भाव नहीं था कि जो अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार परोक्ष शक्ति की जिस रूप में भावना कर सकता है, उसका उसी रूप में उपासना करना ठीक है। वह उपासना तो करता है, भूत प्रेत पूजने वालों की गति तो वे वैसे ही बुरी बताते हैं जैसे किसी दुष्कर्म से होती है। पद है जे परिहरी हरि हर चरण भजही भूतयन घोर, तिन्न के गति मोहि देऊ विधि जो जननी मत मोर। फिर भी उनकी यह अनुदारता उस कट्टरपन के दरवाजे को नहीं पहुंचती है जिसके जोश में अंग्रेज कवि मिल्टन ने प्राचीन सभ्य जातियों के उपास्य देवताओं को जबरदस्ती खींचकर शैतान की फौज में भर्ती किया है। उस कट्टरपन के दर्जे को नहीं पहुंचती है जो दूसरे धर्म की उपासना पद्धति, कोष्टक में जैसे मूर्ति पूजा, कोष्टक बंद, को गुनाहों की फेहरिस्त में दर्ज करती है। गोस्वामी जी का विरोध तो इस सिद्धांत पर है कि जो जिसकी उपासना करता है उसका आचरण भी उसी के अनुरूप रहता है। जिस भक्ति पद्धति में लोक धर्म की उपेक्षा हो, जिसके भीतर समाज के श्रद्धा पात्रों के प्रति द्वेष छिपा हो, उसकी निंदा करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। विश्वास के संबंध में भी उनकी प्राय वही धारणा समझिए जो उपासना के संबंध में है। पृष्ठ 10। यदि विश्वास का आलंबन वैसा श्रेष्ठ और सात्विक नहीं है तो उसे वे अंधविश्वास मानते हैं। पद है, लही आखी कब आधरे, बाज पूत कब पाए, कब कूढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। तुलसी के ऐसे पहुँचे हुए भक्त के दैन्य और विनय के विषय में तो कहना ही क्या है। सारी विनय पत्रिका इन दोनों भावों के अपूर्व उद्गारों से भरी हुई है। रामचरितमानस ऐसा अमर कीर्ति स्तंभ खड़ा करते समय भी उनका ध्यान अपनी लघुता पर से न हटा। वे यही कहते रहे, कवि न हो नहीं प्रचुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्या हीना, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागत कोरे, वंचक भगत हकाई राम के, किंकर कंचन को ह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धधरक धोरी, जो अपने अवगुण सब कहऊ, बढ़ाई कथा पार नहीं लहऊ। पर फिर भी समझ रखना चाहिए कि लघुत्व की यह परमानुभूति परम महत्व के साक्षात्कार के कारण थी। अतः लोक व्यवहार के भीतर उसका कितना अंश समा सकता था, इसका विचार भी हमें रखना पड़ता है। दुष्टों और खलों के सामने उसकी उतनी मात्रा नहीं रह सकती थी जो गोस्वामी जी को उन्हें दुष्ट और खल कहने तथा उनके स्वरूप पर ध्यान देने से रोक देती है। साधुओं की वंदना से छुट्टी पाते ही वे खलों को याद करते हैं, उनकी वंदना करके भी वे उनसे अनुग्रह की आशा नहीं रखते, क्योंकि अनुग्रह करना तो उनका स्वभाव ही नहीं। पद है, बायस पालिए अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। राम के सामने तो उन्हें अपने ऐसा कोई खल ही संसार में नहीं दिखाई देता। उनके सामने तो वे कदापि यह नहीं कह सकते कि क्या मैं उससे भी खल हूं। यहाँ तो वे सब पतितों के नायक बन जाते हैं, पर जब खलों से वास्ता पड़ता है तब उनके सामने वे अपना लघुत्व प्रदर्शन नहीं करते। उन्हें कौवा कहते हैं और आप कोयल बनते हैं। पद है, खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कहिक कलकंठ कठोरा। जब तक साधना के एकांत क्षेत्र में रहते हैं तब तक तो वे अपने सात्विक भावों को ऊंचे चढ़ाते चले जाते हैं, पर जब व्यवहार क्षेत्र में आते हैं तब उन्हें कम से कम अपने वचनों का सामंजस्य लोक धर्म के अनुसार संसार की विविध वृत्तियों के साथ करना पड़ता है। पर इससे उनके अंतःकरण में कुछ भी मलिनता नहीं आती। व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष का उदय नहीं होने पाता। द्वेष उन्हें दुष्कर्म से है, व्यक्ति से नहीं। भारी से भारी खल के संबंध से भी उनकी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती कि अवसर मिला तो इसकी कुछ हानि करते। सबसे अधिक चिढ़ उन्हें पाखंड और अनधिकार चर्चा से थी। खलों से समझौता तो वे अपने मन को इस तरह समझाकर कि सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बड़ी जल्दी कर लेते हैं पर पाखंडियों और बिना समझी बूझी बातें बककर अपने को ज्ञानी प्रकट करने वालों से उनकी विधि नहीं बैठती थी। उनकी बातें सुनते ही वे चिढ़ जाते थे और कभी-कभी फटकार भी देते थे। एक साधु को बार-बार अलग-अलग कहते सुनकर उनसे न रह गया तो वे बोल उठे, तुलसी अलखहि कालखे राम नाम जपु नीच। इस नीच शब्द से ही उनकी चिचड़ाहट का अंदाजा कर लीजिए। आडंबरी और पाखंडियों ने उन्हें चिचड़ा कर दिया था।